अपमान को देखते जाओ, अपमान करने वाले की दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, घबरा जाएगा। तुम अपने उस आत्मज्ञान में टिके रहो तो न्यायाधीश मुकदमे की फतवा लिखते समय उसके कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे लिए उचित हो, हितकारी। आप ईश्वर में टिक जाते, उस ज्ञान स्वरूप में टिक जाते तो फिर शत्रुओं से भिड़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ती। कोई न कोई भगवान उनको प्रेरित करके भिड़ते रहेंगे, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकते। अष्टावकर जनक को कहते तस्य तुलना केन जायते, उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे। राजे राजवताम, राजाओं के साथ राजाओं जैसा, युवे युवा, जवान मिल गए तो जवानों के जैसे, अब स्त्री स्त्रिया मिल गए स्त्रियां तो उनके साथ जैसे, मिल गए विरक्त तो विरक्त, सब कुछ करते कराते भी कभी कुछ करता ही नहीं। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो उसी ठिकाने में, उस ज्ञान सत्ता में, ईश्वरीय सत्ता में, जगना सब धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है। मन इंद्रियों को संयत करना सब कर्मों में और तपों में श्रेष्ठ कहा गया है। वत्स, भगवान वेदव्यास जी अपने संयमी सदाचारी ब्रह्मज्ञान के अधिकारी सुपुत्र को उपदेश देते हैं, और जिनके उपदेश सुनकर परीक्षित राजा भी अपने ज्ञात ज्ञेय ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण तत्व में जग गए। और तक्षक काट रहा है शरीर को, तो ये मेरे शरीर की, इस शरीर की मृत्यु होती है। तक्षक भी पांच भूत और ये भी पांच भूत, लेकिन तक्षक का चैतन्य और कृष्ण का चैतन्य और मुझ परीक्षित का चैतन्य एक आकाश की नाई सत्ता मात्र है, सो हम शिव। तक्षक काट रहा है और परीक्षित समझता कि जैसे धान निकाल दिया तो भूसी की क्या कीमत, ऐसे ही जीवन का फल ज्ञान पा लिया फिर शरीर के क्या है, तो मरने वाला है। ऐसा कोई तन नहीं जो कभी ना मरे है, ऐसा कोई लोक या मकान या चीज नहीं जो नाश ना हो, और ऐसा कोई संयोग नहीं कि जिसका वियोग ना हो। ये तो लीला है, ये तो संसार है। जो जान लेते हैं उनको दुख नहीं होता, और जो नहीं जानते वो परेशान होते हैं। जरा सा लाइट चली गई, अरे 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 लाइट चली गई, लेकिन इतना बड़ा सूरज रोज लाइट आ चला जाता है, अरे बोले होता रहता है। सूरज की लाइट के आगे इतने, इस लाइट के आगे तुम्हारी लाइट क्या, तुम्हारी फैक्ट्रियों की या तुम्हारे घर के फ्यूज़र उनकी लाइट की क्या कीमत। इतना बड़ा लाइटर रोज चला जाता है, अरे सूरज चला गया नहीं तो रोज भाई शाम हुई तो सूरज जाता है। ऐसे संसार है तो होता है, मोटापा तो खांसते। अब ज्ञान तो, आत्मज्ञान तो सर्वोपरि है, लेकिन व्यवहार के जगत में व्यवहार का ज्ञान भी बड़ा फायदा करता है। तो व्यवहार में, व्यवहारिक जगत का ज्ञान नहीं है तो आदमी धोखा खाता है, ठगा जाता है। ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो 84 लाख जन्मों तक धोखा खाता है, ठगा जाता है। सब्जी लेने का ज्ञान नहीं तो बासी सब्जी और महंगी सब्जी मिलती है, अब पक्की भिंडियां ले उठा के आएगा। फ्रूट खरीदने का ज्ञान नहीं है तो वैसे वैसा फ्रूट लाएगा। सोना या हीरे या ज्वेलरी खरीदने का ज्ञान नहीं है तो उसमें थाप खा के आएगा। ऐसे खान पान का ज्ञान नहीं है तो जल्दी बीमार हो जाएगा। महिमा सुन लिया आम की, खूब आम खाया पी लिया पानी हो गए बीमार हो गए। तो ऐहिक ऐहिक व्यवहार में भी उस शुद्ध ज्ञान की सत्ता से विशेष ज्ञान काम देता है। आम का ज्ञान है, पुष्का ज्ञान है, उसका ज्ञान फलाना ज्ञान देना है। आम तो फल भी है, टॉनिक भी है, औषधि भी है। बहुत सारे रोग इस गर्मियों में आम खाने से बहुत सारे रोग चले भी जाते लोग, फिर भी ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। आम की सीजन में मैं तंदुरुस्त होता हूँ, ये ज्ञान भी अज्ञान है। आम की सीजन में मेरी एलर्जी चली जाती है, और फिर एनर्जी कुछ दिनों के बाद एनर्जी चली जाती तो एलर्जी आ जाती। ये व्यावहारिक ज्ञान तो दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये सब मरने मिटने वाले शरीर पर प्रकृति का प्रभाव होता है। मेरी एनर्जी चली जाती है, मुझे एलर्जी हो जाती है, ये ज्ञान दिखते हुए भी अज्ञान है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान विश्व में पवित्र करने वाले और कोई चीज नहीं। गंगा पवित्र है, अमुक तीर्थ क्षेत्र पवित्र है, भगवान के नाम पवित्र है, पवित्र आहार है, पवित्र वस्तुएं हैं, कई जैसे चंदन आदि पवित्र माना जाता है, गंगा जल पवित्र माना जाता है, तीर्थभूमि पवित्र मानी जाती है, प्रभात काल पवित्र माना जाता है, ये सब अपनी अपनी जगह पर पवित्र हैं। लेकिन आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला दुनिया में और कुछ नहीं। गंगा को भी आत्मज्ञानी के चरणों से पवित्र कर देते हैं। गंगा को भी शुद्ध होना है तो ब्रह्मज्ञानी उसमें नहाएगा तो गंगा अपने को पवित्र मानती। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते, तो गंगा में स्नान करने जाए तो बह जाने का भय रहेगा, सर्दी लगने का भय रहेगा, और पंडा के इर्द गिर्द कोई जेब कतरे का हाथ न लग जाए उसका भय रहेगा। लेकिन सत्संग गंगा में नहाना हो तो महाराज सर्दी का भय नहीं, और अपने इलाके की गर्मी भी सत्संग के इलाके में नहीं लगती है। जयराम जी की, ये कल्पित ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है कि हम मध्य प्रदेश वाले, हम दिल्ली वाले, गर्मी ठीक सर्दी, ये तो शरीर को मैं मानकर मिथ्या संसार को सत्य मानकर ये कल्पना में भाग रहे जा रहे अपन। शुद्ध ज्ञान तो ये है कि न गर्मी सत्य है, न सर्दी सत्य है, न जीवन सत्य है, न मृत्यु सत्य है, न मध्य प्रदेश सत्य है, न दिल्ली सत्य है, न धरती सत्य है, न आकाश सत्य है, न जल सत्य है, न तेज सत्य है, न वायु सत्य है। ये तो हो के मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता वो अमिट ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा सत्य स्वरूप है। उस परमात्मा के ज्ञान को अपना आपा समझकर विश्रांति पाना। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्मतत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कल न च भूत संगम। ये भूत तो बदलते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसके परिवर्तन को भी जो जानता है वो चैतन्य आत्मा में ए ज्ञान है, उसके अन्यथा अज्ञान। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका, तो अज्ञान इतना बलवान कि ज्ञान को ढक दिया, इतना पावर मान लिया, नहीं नहीं ज्ञान को तो नहीं ढका, लेकिन हमारे मन बुद्धि को ढका। जैसे बादलों ने सूरज को नहीं ढका, लेकिन हमारी आंखों की क्षमता जितने दूर तक देखने की उतने दूर हमें अंधेरा दिखता है, बादल छा गए, लेकिन 10 किलोमीटर पर सूर्य की धूप होती होगी, होती है। तो सूरज को बादल नहीं ढकते, हमारे सीमित साधनों के आगे बादल आ जाते, तो हम बोलते सूरज ढक गया। ऐसे ही बोलते कि अज्ञान से ज्ञान ढक गया, वास्तविक में नहीं ढका। तो सूरज दिखता है उसको भी हम जानते और नहीं दिखने को भी हम जानते, तो ज्ञान तो नहीं ढका। हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई ये भी तो हम जानते, तो नहीं को भी हम जानते, है को भी हम जानते, तो नहीं और है ये दोनों अवस्था में जो मौजूद है, और दोनों अवस्था बदल जाए फिर भी जो नहीं बदलता वो मेरा आत्मा है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। खूब घोर अपमान हो रहा है, देखो कि अपमान नहीं था तभी भी हम थे और अपमान हो रहा है, देखो अपन तो हैं। अपमान को देखते जाओ, अपमान करने वाले की दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, घबरा जाएगा, आपका प्रभाव पड़ जाएगा उस पर, प्रभाव पड़ जाए इसलिए करता हूं तो नहीं पड़ेगा। अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने उस आत्मज्ञान में टिके रहो तो न्यायाधीश मुकदमे की फतवा लिखते समय उसके कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे लिए उचित हो, हितकारी हो, अन्यथा लिख नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप में हो, शुद्ध में, और वो लिखता है प्रकृति के शरीर से। प्रकृति हमेशा परमात्मा की फेवर करेगी, दासी हमेशा राजा की फेवर करेगी। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा, राजस्थान में खेरथल है बांधी कोई के उधर को, तो खेरथल में एक मुखी मेवाराम रहता था, अभी उसका शरीर चला गया शायद। उसने बापूजी के लिए कमरा और एक गुफा बनाई थी, भगत था। कभी कभार बापूजी जी एकांत में, छोटा सा पहाड़ी था उसके पहाड़ी के पास, हम देख के आए वो गुफा। तो मुखी था तो गांव में कुछ इधर उधर होता था, तो कुछ शराबी बरा भी चालू हो गए, कोई शराब बनना बिकना, तो उसमें मेरे मुखीपने होते पे मैं बापू का शिष्य और मेरे खेरतल में शराब बरा ठीक नहीं, बंद कराना चाहिए। तो वो बंद करने वाले बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? कि थानेदार तो हफ्ता लेता है, तुम क्या कर सकते हो? पुलिस हमारे साथ है तो तुम मुखी क्या कर सकते हो? तो थानेदार को समझाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये थानेदार ने कहा जाओ तुम अपना मुखबंद संभालो, बड़े आए दारू बंद करो, फलाना करो, ये करो ये करो, हमें छोटे छोटे छोरों की ज़िंदगी ख़राब होती है, फलाना है ये है वो। किसी कारण से थानेदार की अब दारू बंद, और दूसरी कोई जुगाड़ बुगाड़ कोई ऐसी बात थी कुल मिला के, तो थानेदार की और मुखी मेवाराम की आपस में तू तू में हो गई। तो मुखी ने उठाकर थप्पड़ ठोक दी थानेदार। आप पुलिस के अमलदार को थप्पड़ ठोकना तो वो तो कायदे कलम 307 और फलानी और ढींगणी और ये वो, अब मुखी को फिट कर दिया कानूनी कार्रवाई के हिसाब से। और गवाह बवाह तो उनके पास होते रेडीमेड। मुखी मेवाराम घबराया, बापू को चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा हो गया, और थानेदार को खाली मैंने एक ही थप्पड़ मारी बस। उन्होंने तो ये हथियार लिखे, ये लिखा 307 लिखा, 302 किया है, क्या क्या किया है। वो चिट्ठी उसने लिखी, मैंने पढ़ी, बापू का सेवक था मैं उस समय। बोले अच्छा उसको लिखो, मुखी मेवाराम खत तुम्हारा मिला, जो हो गया भूल जाओ, तुम भगवान में स्थित रहो, जो होगा ठीक होगा, तुम चिंता जरा ही नहीं करना, कुछ नहीं होगा तुमको। हमने चिट्ठी तो लिख दिया, और कुछ 4-6 महीने के बाद हम ध्यान रखते रहे कि बापू ने तो ऐसा लिखा है, मुखी मेवाराम का क्या होता है। तो मुखी मेवाराम को जजमेंट मिलना है, जब जजमेंट मिलना है तो जज बोलता है अच्छा फलानी तारीख आना, फलानी तारीख जजमेंट देता है तो बोले अच्छा फलानी तारीख आना, फलानी तारीख आना, जजमेंट की तारीखें बदल रही। आखिर जज ने कहा कि मुखी मेवाराम कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ कलम चलाने नहीं देती है, जाओ तुम बरी। उधर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा स्वस्वरूपे स्थिर था ए बदा सहजे टड़े। मीरा अनजाने में भगवत भाव में थी अपने ज्ञान में। कितना विक्रम राणा ने प्लानिंग किया, कितना दुखी करने की कोशिश किया, कितना बदनाम करने के षड्यंत्र रचे गए, फिर भी मीरा का तो यश वो मिटा नहीं सका। एक बार मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग करके आयोजन किया कि ये मीरा मेवाड़ का नाक काट रही, कहाँ तो क्षत्रियों की रानी और कहाँ इन मुंडों के साथ कीर्तन में नाचने लाग जाए, अब कुछ भी करके इसको उसके कृष्ण के धाम में भेजना पड़ेगा। लेकिन स्त्री हत्या का पाप अथवा समाज में बदनामी ये भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता मीटिंग करते हुए कूटनीति के मंत्रियों ने बताया कि अपने जू में राज्य के जो सिंह पाले हुए हैं उस सिंह को भूखा रखा जाए 2-4 दिन, और फिर मीरा के प्रांगण में वो पिंजड़े में सिंह लाया जाए, और युक्ति से पिंजड़ा खोल दिया जाए तो मीरा और सिंह की मुलाकात एक ही काफी है, वो तो भूखा होगा। और मेरा तो मेरा गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल हो जाएगा उसका गिरधर गोपाल। विक्रम ने कहा ठीक कहते हो मंत्री, हम तुम्हारे मुंह में घी शक कर देंगे। वो प्लानिंग कर दिया, प्लानिंग के अनुसार महाराज शेरे बबर और दो चार दिन भूखा मरता क्या न करता। मेरा पूजा के रूम में से निकल के प्रांगण में जाने वाले और प्रांगण के दरवाजे पे पिंजरा रख दिया और युक्ति से खोल दिया तो शेर दहाड़ता हुआ न। मीरा कह रहे नरसी अवतार मेरे ठाकुर जी आए, ठहरो प्रभु ठहरो मैं आपकी पूजा करूं। मीरा के उस ज्ञान दृष्टि अद्वैत दृष्टि के तरंग पड़े उसके आंखों पर। मीरा पूजा की थाली लाई और उसको तिलक किया और आरती की, जय जय गिरधर गोपाल तू नरसी अवतार होकर आया। वो छुपे देख रहे थे कि ये शेर है कि कुत्ता है, तो पालतू कुत्ता हो गया क्या हो गया रे इसको। संवेदनाओं का ज्ञान तो उन पशुओं को भी होता है, भावों की संवेदना तरंग वो भी झेलते। फिर वो जो षड्यंत्र करने वाला मंत्री था और दूसरे दो चार थे, उन्होंने देखा कि मीरा को कुछ नहीं करता तो चलो भाई ऐसे मूर्ख शेर के चलो उसको पिंजरे में डालते। तो वो जाते जाते पिंजरे में जाते जाते एक को यूं झपटा मारा और दूसरे को हाँ किया, तो दोनों को डैमेज करके वो पिंजरे में चला गया। अमीरा जो कि थे बुद्ध भगवान बैठे थे अपने आत्म शांति में और ऊपर से चट्टान गिरी, आसपास के भिक्षुक भाग गए, बुद्ध जो कि थे बैठे थे, चट्टान लुढ़कती लुढ़कती आ रही थी बराबर सीधी बुद्ध के ऊपर गिरने की। लेकिन थोड़ी दूर पर दूसरी चट्टान से टकराई, दो टुकड़े हो गए, एक बुद्ध के दाहे निकल गया और बाहें निकल गया, बुद्ध हेम खेम बच गए। टकराव से पैदा हुई एक पत्थर की कणी निकली और बुद्ध के पैर के अंगूठे में लगी। बुद्ध ध्यान से उठे, बुद्ध ने कहा कि भिक्षु को ये मेरी समाधि की थोड़ी कच्ची अवस्था थी इसलिए इतना तिनखा लगा, नहीं तो ये भी नहीं लगता। आप ईश्वर में टिक जाते, उस ज्ञान स्वरूप में टिक जाते तो फिर शत्रुओं से भिड़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई न कोई भगवान उनको प्रेरित करके भिड़ते रहेंगे, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकते। और कभी बाह्य ढंग से हार जीत भी हो गई तो आपके चित्त में चोट नहीं आएगी, मित्र आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आपके बिना मत बनाए सब मित्र बनने लग जाएंगे, सेवक मुंडने नहीं पड़ेंगे, बिना कहे सब सेवक होने को तैयार हो जाएंगे। एक फकीर धूली शाह हो गए, धूली शाह तो ऐसे ही धूल में बैठे रहते रामते। राजा की सवारी जा रहे थे और फकीर बैठे थे धूल में, आकर आरटीओ वाले ने कहा कि महाराज राजा साहब की सवारी आ रही है जरा किनारे हो जाओ। बोले राजा को बोलो कि दूसरी सड़क से निकल जाए, इधर शहनशाह बैठा है, तू राजा है यहाँ महाराज बैठा है, हम नहीं हटते। तो राजा धर्मात्मा था, देखा संतों की बात में बात बाद में बात होती है, तो रथ से उतरा, बोले महाराज आप शहनशाह कैसे हैं, आपके पास क्या है? मेरे पास तो खजाना है, नौकर चाकर है और ये देश मेरा है। तो धूली शाह ने कहा इसीलिए तो कहूँ तू राजा है, मैं महाराज हूँ महान राजा हूँ, तेरा तो केवल सीमित देश है लेकिन मैं इस राज्य से दूसरी जगह जाऊँगा तभी भी मेरे लिए मौज है, और तेरे तो खजाने की आसक्ति इसलिए सिपाही रखने पड़ते हैं और पगार देते हैं, सेवकों को पगार देते, और मैं जहाँ जाता हूँ बिना पगार दिए हुए श्रद्धालु भक्त ऐसी सेवा करते हैं कि तेरे नौकर का बाप भी नहीं कर सकता। तू तो पगार देता है उनको फिर भी उतने भाव से सेवा नहीं होती जितनी हमारी होती सेवा, जय जय। अब तेरे को तो पटाने के लिए लोग सलाम मारेंगे यूं करेंगे, और हमको पटाने के लिए नहीं, हमको तो समर्पित होने के लिए प्रणाम करेंगे। तेरे को नकली प्रणाम मिल जाते अहंकार को पोषने के लिए, और हमको असली प्रणाम मिलते प्रेम को झेलने के लिए। तेरा तो सीमा सीमा में राज है और हमारा राज असीम। तू राजा है, महाराज है, और तू भोग भोग कर आयुष्य नष्ट कर रहा है, हम योग का आनंद लेकर जीवन सार्थक कर रहे हैं। बोले महाराज, महाराज मेरे को चिंता बहुत रहती है। राजा कहते हैं, महाराज मेरे को चिंता बहुत रहती। कभी रानियों में क्लेश, तो कभी छोरे छोरियों के, तो कभी पास के राजा का। बोले ऐसा कोई भोगी नहीं जिसके पीछे दुख और रोग ना हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग ना हो। एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जो जग जाता है, आत्मरस में तृप्त रहता है, वही जीवन जीने का ढंग जानता है। बाकी तो जीते जी सब मरे जा रहे हैं, मरने वाले शरीर को मैं मानकर सब मरे जा रहे हैं। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। बाबा जी ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, 2000 का मनी ऑर्डर 20000 कैसे बन गया, ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। भाई ये संसार है, माया का कोई था नहीं। और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तू तो अपनी पैर में चप्पल पैर ले ताकि तुझे कांटा ना लगे। बाकी तो किस किस के लिए तू चिल्लाएगा, किस किस के लिए करेगा। अपनी तरफ से थोड़ा कर दिया, लेकिन उस टेंशन में अपनी शांति या अपना ज्ञान या अपना श्रद्धा उसकी बलि मत दीजियो। अब गड़बड़ तो वो करता और परेशान तुम हो रहे। वो करेगा, वो भोगेगा, तुम अपनी शांति की बलि क्यों दे रहे, तुम अपनी साधना की बलि क्यों दे रहे। मुल्ला जी दुबले क्यों है, बोले सारे गांव की फिक्र है। अरे मुआ फिक्र फेंक कुएं में। ऐसा क्यों हुआ, चाहे ऐसा ना हो तो ठीक है, अपना कहना है कह दो, करना है कर दो, बाकी वो खोपड़ी में मत भरो। नारायण हरि, नारायण हरि। एक कल्पित कहानी है, कल्पित कहानी है, सच्ची नहीं, कल्पित कहानी। गाजियाबाद में दो कुत्ते दोस्ती से रहते थे, एक का नाम था लालिया, दूसरे का नाम था मोतिया। लालिया ने सुना कि भाई अभी कुंभ मेला हो रहा है, अपन भी हरिद्वार नहा ले। मोतिया ने कहा जरूर नहाना चाहिए, मैं भी नहाऊंगा। लालिया ने कहा हम तो ये चले। मोतिया ने कहा अभी तो 28 अप्रैल का स्नान बाकी है, उसके पहले का स्नान भी बाकी है, अभी तो काफी दिन है, इतनी जल्दी क्या है। 14 जनवरी को चल पड़ते हो, चैत्र शुद्ध बीजी का और पूनम का, ये वैसाखी का स्नान, आराम से फिर जाना। बोले नहीं यार, रास्ता लंबा है, हो सकता है कि कहीं देर सबेर हो, तो मैं तो ये चला। वो गया आया ही नहीं। मोतिया तो बिल्कुल आखिरी दिनों में गया, 20 अप्रैल को चल दिया, वो तो जनवरी को निकला और वो 20 अप्रैल को। अब मोतिया नहाकर जब लौटा तो देखा कि लालिया तो मोदी नगर में अभी पहुंचा है, गाजियाबाद से चला तो अभी मोदी नगर में ही पहुंचा। क्यों भाई तू नहाने नहीं गया? बोले मैं चला तो जनवरी को था, लेकिन कहीं थोड़ा सा चला तो अपने जाति वाले मिले, कोई भौंका तो फिर उनको सुधारा, कोई वो करा, कोई उनसे भिड़ा, कभी उनसे भिड़ा, फिर देखा कि इनको समझाए बिना आगे कैसे जा सकते, तो फिर अपनी टोली बनाई। तो कहीं देख यार चीरे चीरे हो गया है, शरीर फट गया है, अब मक्खियाँ बुनबुनाती है, कुंभ का स्नान अब कब तक है? बोले 28 तो पूरी हो गई और तू तो यहाँ मोदी नगर ही पड़ा है। तो यार तू गया कि नहीं गया? बोले मैं तो नहा के आया। तो कब चला था? बोले मैं 20 अप्रैल को चला था। तो क्या तेरे को नहीं मिले? बोले मेरे को मिलते थे, कोई भौंकता था तो हम पूंछ हिला देते थे। कोई ऐसा करता तो हम फिर यूं कर देते, हम तेरे हैं तेरे हैं तेरे। तो कोई तेरे में पे मानते तो हम मना के निकल जाते, कोई पीछे पड़ते तो हम तेजी से भागते। तो उन्होंने भी तेजी से भगाने में हमको सहायक कर दी। हम भिड़े नहीं और भागे, अपना काम लक्ष्य था। तो हम तो नहा के ये लौटे। भाईजान आपका क्या हाल है? बोले यार मेरा तो बस बहुत बुरा है, मेरा और मेरे साथी सब इधर देखो। तो ये कल्पित कहानी से ये सीखना है कि जैसे उनका लक्ष्य था कुंभ नहाना, तो फिर रास्ते में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, भिड़ने वाले भी मिलेंगे, भिड़ाने वाले भी मिलेंगे। जय जय। कभी मन भी भिड़ाएगा, कभी बुद्धि भी भिड़ाएगी, कभी शरीर भी भिड़ाएगा कि इधर अनुकूल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आज ये, अब ये वायदा क्या, अब ये क्या। अब कहते हैं कि हम गुरुजी आपको हमने अर्पण कर दिया तन मन धन, लेकिन गुरुजी अब ये मेरा ये निश्चय है। तो तू चेला है कि क्या है? तो मेरा अब ये निश्चय है, हैं तो गुरुजी हम आपके, लेकिन मेरा निश्चय ये है। तो न तन अर्पण हुआ है न मन अर्पण हुआ है, धन तो चाहिए ही नहीं, लेकिन मन अर्पण भी ईमानदारी से होता तो कहीं के कहीं पहुंच जाते हजूर। एक ऐसा भी साधक था कि गुरुजी को तन मन अर्पण कर दिया, फिर वो डीसा में रहता था। उसकी वो जवानी में गर्मी के कारण दाढ़ी में तो खुजलाहट, ये बाल बाल बढ़ जाते, तो गुरु को चिट्ठी लिखता लीलाशाह बापू जी। वो चिट्ठी घूमती घामती जाती कि गुरुजी को लगता कि दाढ़ी बाल बढ़ गए, आपकी आज्ञा हो तो कटा दो। क्योंकि जब तन मन अर्पण कर दिया तो दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, बाल मेरे बाप के थोड़ी है, गुरुजी की प्रॉपर्टी है। तो वो ऐसा भी कोई हो गए और हम उनके शिष्य हैं, और हमारा ये इरादा है हम ये करेंगे, आज घर जाएंगे, आज बेटे के पास जाएंगे, आज ये करेंगे, इतने महीने के बाद ये करेंगे, इतने दिन के बाद हम ये करेंगे। तो तुम्हारा पूरा प्लानिंग तैयार है, तो भाई अभी आपका मन भगवान के लिए तड़पता नहीं है, ये बात पक्की है। तड़प हो तो फिर बोले यार मेरे को 3 बार हार्ट अटैक हुआ रात, एक रात में, और बड़ी चैन से सोया। 3 हार्ट अटैक हुए और बड़ा चैन से सोया, हो सकता है क्या? आशकें दिले दर्द वो सुख से कैसे सो सकता है? जिसको तड़प है वो मनमाने निर्णय नहीं कर सकता है, मनमाने डिसीजन नहीं ले सकता है। रहूंगा तो गुरुजी आपके आश्रम में, और मुझे साक्षात्कार करना ये बिल्कुल पक्की बात है, इसलिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ। लेकिन 15 दिन के बाद मेरे को यहाँ जाना है, और चैत्र शुद्ध बीज के समय मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। गुरु ने कहा वो करना है चैत्र शुद्ध को तो अभी कर ले। बोले नहीं गुरुजी अभी नहीं करना है, मेरा निर्णय चैत्र शुद्ध बीज को जाने का है। भाई अभी जा क्या? बोले अभी नहीं जाना है। तो गुरु का चेला है कि चेले का गुरु है कि कपड़ा? अच्छा बाबा जो तुम्हारी मर्जी करो। और गुरु क्या करेंगे, कितना सिर खपाएंगे? अच्छा भाई चलो, केजी का है अभी तो, बाल मंदिर का है, हाई स्कूल का है, अभी पीएचडी का ग्राहक नहीं हुआ।